नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
And then we can sell to further markets as well.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान की विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।